ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी। सब लोग बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के इसके संध्या के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। रागी कृष्ण प्रभु के पत्नी के तिरुभाव दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। तिरुभाव के समय श्रीमद् भागवत या श्री कृष्ण या श्री कृष्ण के भक्त के विषय में कथा करनी चाहिए। तो तिरुभाव प्राप्त किए हुए आत्मा को उस कथा का लाभ होता है। श्रीमद् भागवत की कथा इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई जीव किसी कारणवश अगर प्रेत योनि में भी लटका हुआ है तो भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से, उसका कीर्तन करने से वो जीव उस भयंकर अवस्था से मुक्त हो सकता है और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। पुराणों में इसका वर्णन आता है कि धुंधुकारी जो बहुत भयंकर पापी था, जिसको अपने पाप कर्म के वजह से प्रेत योनि प्राप्त हो गई थी, तो उसके संत भाई ने श्रीमद् भागवत की कथा की तो धुंधुकारी को साक्षात वैकुंठ से विमान आया और उसे भगवान धाम में, भगवान के धाम के दिव्य शरीर में लेकर चले गए वो। तो इतनी शक्ति है श्रीमद् भागवत में, क्योंकि वेदों के वृक्ष पर आया हुआ वो सबसे आखिरी फल है जिसका श्रवण और कीर्तन किसी भी जगह पर किसी भी समय केवल कल्याणकारी होता है और जीव को हर प्रकार से बंधन से मुक्त कर सकता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो भी अभद्र है, जो भी अपवित्र है, जो भी अच्छा नहीं है, जीव के लिए कष्टकारी है, वो श्रीमद् भागवतम के श्रवण और कीर्तन से नष्ट हो जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से श्रीमद् भागवत का कथन श्रवण करने से सारा जो कुछ अभद्र है वो नष्ट हो जाता है। भगवती उत्तम श्लोके, हाँ ये जो श्लोक हैं भागवत के वो उत्तम है, वो तम से हमको उठाने वाले हैं, तम से उठाकर हमें सत्व में स्थित करने वाले हैं। भगवान विशुद्ध सत्व में है, उस गुण में हमको वो खींच सकते हैं। भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी, नैष्टिकी यानी जो कभी भी हिल नहीं सकती, इसको कोई विस्थापित नहीं कर सकता, तो कोई कमज़ोर नहीं कर सकता, तो हमेशा बढ़ने वाला है, ऐसा स्थान, ऐसी शक्ति जो है, ऐसी भक्ति, इस प्रकार की नैष्टिकी हृदय में स्थित हो जाती है जब हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि श्रीमद् भागवत की कहानी का वर्णन संक्षेप में किया जाए, माताजी की याद में, माताजी के लिए। तो भगवान जब बाल अवस्था में थे, उसको कहते हैं वत्सपाल, वत्सपाल यानी तभी वो बछड़ों की देखभाल करते थे। बछड़ों की देखभाल करते समय नंद भवन के चोटी पर जाने के बाद में चारों दिशा में कहीं भी देखेंगे तो जहाँ तक नज़र पहुँचती है उसके अंदर होना चाहिए, वो वत्सपाल लीला का नियम था। जब बछड़ों को लेकर चराते थे तो उसके बाहर नहीं जाना है, जितनी जहाँ तक नज़र पहुँचती है नंद भवन के चोटी से उसी क्षेत्र में रहना है, उसी दायरे में रहना है। तो वत्सपाल लीला में भगवान अघासुर का वध करते हैं, और अघासुर ये इतने भयंकर राक्षस था वो कि ब्रह्मा तक उसका डर फैला हुआ था। अफकोर्स ब्रह्मा जी को कोई डरा नहीं सकते, लेकिन ब्रह्मा तक उसका जो डरावना कार्य था जिससे देवता भयभीत हो गए थे वो खबर वहाँ तक पहुँच गई थी। यहाँ तक कि इंद्र आदि सारे देवता डर कर कहीं कहीं छुपे हुए थे, सारे देवता लोग। तो ऐसे अघासुर को, ऐसे भयंकर राक्षस जो पाइथन यानी अजगर के रूप में आया था, उसको भगवान ने ख़त्म कर दिया। तो ये खबर जो है वो सारे देवताओं को मालूम पड़े कि हमारा जो त्राही त्राही करने वाला राक्षस था वो मर गया, और सुनते हैं कि उसको एक ब्रज के बालक ने मारा, वो भी केवल 5 साल के छोटा उम्र का बालक। तो ब्रह्मा जी जब ये बात सुने तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि अरे ब्रज का गाय चराने वाला बालक कैसे मार सकता है उसे। देवताओं ने कहा नहीं नहीं ये सच बात है कि देवताओं को डराने वाला, भयंकर डराने वाला ये राक्षस जो है वो एक बालक ने मारा है, और वो गाय चराता है, वो वन में डोलता है, वो जमुना में डुबकी लगाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हमको जाके देखना चाहिए, हम खुद जाकर विश्वास करना चाहते हैं कि वो कौन है। तो आए वो अपने हंस पर बैठकर ब्रह्मा लोक से पृथ्वी पर आने लगे, और आकाश में एक जगह पर अपना हंस जो है वो खड़ा कर दिया उन्होंने, वहाँ से देख रहे हैं। और क्या सीन देख रहे हैं, जमुना जी के किनारे सारे ग्वाल बाल जो करोड़ों की संख्या में थे वो कमलाकार बैठे हुए हैं, सुंदर कमल के आकार में। उसके बीच कमल में कृष्ण बैठे हुए हैं बलराम जी के साथ, अष्ट सखा पहले सर्कल में बैठे हुए हैं, उसके बाद में दूसरे सखा, तीसरे सखा, ऐसे सर्कल में इस तरह से बहुत सुंदर व्यवस्था में सब लोग बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं, लंच का समय हो गया है, तो वो अपना अपना डब्बा जो है वो खोल रहे हैं, अपने अपने घर से जो बना के लाया वो खोल रहे हैं, और वो खा रहे हैं, और खा के चक्कर जो अच्छा लग रहा है वो कृष्ण के मुंह में दे रहे हैं। अरे देखो देखो कन्हैया, देखो मेरे मैया ने कितना बढ़िया बनाया है, इसे खा लो इसे खा लो, ये बहुत बढ़िया है। उतने में धुरा बोलता, नहीं ये मेरे मैया ने बड़ा बनाया है, बढ़िया बनाया है। तो कृष्ण इसको भी खा रहे हैं, उसको भी खा रहे हैं, और वो बचा हुआ दूसरे को भी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे मैया ने भी कुछ दिया है, उसको भी खा के दूसरों को खिला रहे हैं। इस तरह से सब लोग सबकी जूठन खा रहे हैं, एक आइटम जो है वो कई लोग खाए जा रहे हैं। अभी ब्रह्मा जी को क्या आदत है, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा लोक में, स्वर्ग लोक में कई जगह पर को है, भगवान के कई श्लोकों को उच्चारण करने के बाद घंटी बजाकर बड़े प्रेम से भगवान को आह्वान करके नैवेद्यम करते हैं, और कुछ देर बाद में उसको फिर घंटी बजाते हैं, फिर मंत्र बोलते हैं। अरे हमारे तो वो शॉर्ट में होते हैं इस दुनिया में, लेकिन स्वर्ग लोक में, ब्रह्मा लोक में कितना विस्तार में करते होंगे। और वही उनको आदत थी, कई श्लोकों को अर्पण करने के बाद में भगवान को भोग लगता है, भगवान उसको स्वीकार करते, उसके बाद में वो महाप्रसाद सबको मिलता है, और वो कितना दुर्लभ है। वही ब्रह्मा जी एक बार मछली बनकर आए थे, ये सोच करके भगवान भोजन करने के बाद में हाथ धोते हैं, और वो जो हाथ को लगा हुआ प्रसाद है उसका कुल्ला भी जमुना जी में करते हैं, तो उनका महाप्रसाद जमुना जी में जाता है, तो मैं मछली बनकर उसको खा लूँगा। तो भगवान हाथ धोने गए, देखा अरे मछली घूम रही है, और पहचान जाते हैं कि अरे ये तो ब्रह्मा जी है। तो उस समय दोने में से पानी लेते हैं और जमीन पर जाके हाथ धोते हैं इसका मतलब ब्रह्मा जी को भी उनका महाप्रसाद प्राप्त नहीं है। और ये लोग तो कोई मंत्र वंत्र छोड़ दो, उसको मंत्र तो है ही नहीं कुछ, घंटी वंटी मंत्र मंत्र भूल जाओ, सीधे मुंह में देते हैं और सीधे मुंह से खींच के खुद भी खा जाते हैं। तो उनको शंका उत्पन्न होती है, अरे ये कैसे भगवान है, ये भगवान कैसे हो सकता है, वो सबकी जूठन खा रहा है, वो खुद की भी दे रहा है दूसरों को भी खा रहा है, कोई मंत्र नहीं तंत्र नहीं, ये भगवान तो होना नामुमकिन चीज़ है, ये तो बच्चों का खेल है, ये सब बच्चे बच्चे खेल रहे ग्वाल बाल। तो फिर भी देवताओं का शब्द याद आता है उनको कि नहीं नहीं देवताओं ने कहा था यही भगवान है, यही भगवान ने अवतार लिया ग्वाल बाल के रूप में, और वही राक्षसों का वध कर रहे हैं, तो मुझे कसौटी करनी चाहिए मेरे बल के प्रयोग करके। तो वो हंस के माध्यम से, पहले तो क्या होता है सब लोग बैठकर भोजन कर रहे हैं तो गायें ऐसे चर रही हैं, थोड़े अंतर पे चल रही है। सब गायों को पकड़ पकड़ के गुफा में बंद कर देते। कुछ जगह लिखा है कि वो अपने ब्रह्मा लोक के अंदर जाके बंद कर देते उनको, इतनी गति है उनकी। और कुछ देर बाद में उनको ध्यान में आता है, अरे अपने बालक कहाँ गए, कहाँ गए बछड़े कहाँ गए। तो कृष्ण कहते चौन चिंता मत करना, आप अपने आनंद को डिस्टर्ब मत करना, मैं जाके देख के आता हूँ, आप अपना भोजन करते रहो, अपने आनंद में व्यवधान नहीं आना चाहिए। और खुद हाथ में दही और चावल और कुछ मिठाई लेकर ऐसे खाते खाते जाके वो सब जो कमलाकार बैठे हुए उसके बाहर जाते हैं और देखते हैं कि सभी गायों के जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे खूर हैं उसके निशान सब जगह दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ देर बाद में सब निशान गायब हो रहे हैं। एक विशिष्ट अंतर के बाद में सारे गायों के बछड़ों के चरणों के चिन्ह जो है वो नष्ट होते नजर आते। तो वो समझ जाते हैं कि सब ब्रह्मा जी कसौटी कर रहे हैं। और जब वो देख रहे हैं बछड़ों के चरण के चिन्ह को देख रहे हैं तो उतने में ये सारे ग्वाल वालों को भी उठा लेते हैं, सभी लोगों को उठा लेते हैं, पूरा मैदान खाली कर देते हैं, कोई कमलाकार व्यवस्था कुछ नहीं है। लौट के आता देखते तो अरे ग्वाल बाल भी गायब हो गए। बोले कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी परीक्षा कर रहे हैं तो करने दो, मैं मेरा काम करते रहूँगा। लेकिन एक मन में चिंता उत्पन्न होती है कि अरे मेरी मैया क्या बोलेगी, और इतने सारे ग्वाल बालों की इतनी मैया है वो क्या बोलेंगी, कहाँ गए हमारे बालक, सुबह तो तुम ले गए थे उनको, और बछड़े कैसे गए, बछड़े भी नहीं है, तो वो कैसे होगा फिर, क्या बताएंगे उनको, क्या क्या कारण बताएंगे कि ब्रह्मा जी आए थे हमारी कसौटी कर रहे हैं, मैं भगवान हूँ, कैसे बता सकते हैं। तो माधुर्य का भंग होगा, जो किसी को पता नहीं है ब्रज में कि वो भगवान है, वो भी ऐश्वर्य से भर जाएगा भाव, तो ब्रज के भाव को भी बिगाड़ना नहीं है, तभी क्या करें। तो फिर जितने भी ग्वाल बाल थे उतने सारे रूप धारण कर लिए उन्होंने। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि केवल रूप धारण नहीं किया उन्होंने, अगर किसी ग्वाल बाल को यहाँ पेंसिल रखने की आदत है वहां पेंसिल भी रखी हुई थी। ऐसे थे ग्वाल बाल, कोई यहाँ पर कोई डंडी रखते थे, यहाँ पर कोई फूल रखते थे, किसी को यहाँ पर बिगुल रखने का आदत था, किसी को यहाँ पर मुरली लगाने का आदत था। सारे व्यक्ति की हूबहू आदतों के साथ, सारे विशिष्ट रूपों के साथ में उन्होंने विस्तार किया अपना, और बछड़े भी बने खुद, हर एक ग्वाल बाल के बछड़े अलग हुआ करते थे, उनका विशिष्ट झुंड हुआ करता था, उनके विशिष्ट तरीके हुआ करते थे। वो सारे विशिष्ट तरीकों के साथ, रूप के साथ, आदतों के साथ, सब प्रकार के ऐश्वर्य के साथ में वो विस्तारित हो गए। सब ग्वाल बाल कृष्ण, सब बछड़े भी कृष्ण। और फिर वैसे ही जैसे रोज जाते हैं घर पे, समय होने पर मुरली बजाते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए, मजाक करते हुए, जोक मारते हुए, एक दूसरे को हंसाते हुए, किसी का कान खींच रहे हैं, किसी का कुछ खींच रहे हैं, किसी बछड़े का पूछ खींच रहे हैं, तब उधर शाखा पे कूद रहे हैं, फिर उधर ऊपर से नीचे कूद रहे हैं, कभी कुछ लोग ऊपर से जा रहे हैं, कुछ लोग नीचे से जा रहे हैं, फिर नीचे के ऊपर से नीचे से जा रहे हैं, नंदगांव से वृंदावन तक, और कभी कभी वृंदावन से नंदगांव तक ऐसे पेड़ हुआ करते थे जिसकी शाखा जो है वो सीधे वृंदावन से नंदगांव तक, और नंदगांव से वृंदावन तक, भांडिर वन से और किसी वन तक, गोवर्धन से वृंदावन तक, गोवर्धन से नंदगांव तक, ऐसे झाड़ पेड़ हुआ करते थे। तो कई बार ये ग्वाल बाल जो है नंदगांव में पेड़ पे चढ़ते थे, सीधे वृंदावन में उतरते थे, नीचे गाय बछड़े चल रहे हैं, गाय चल रहे हैं, ऊपर से कंट्रोल करते थे उनको। तो वो सब नित्य जो कार्य है सहजता से जो हो रहा है उसी प्रकार से ये जा रहे हैं सब। अंतर केवल इतना ही है, ये सब कृष्ण है, अभी बछड़े भी कृष्ण है और ग्वाल बाल भी कृष्ण है। केवल उसमें उस दिन बलराम जी नहीं थे, ये विशेष बात है, मैंने गलत बताया कि बलराम जी साथ बैठे हुए हैं, बलराम जी उसमें बैठे हुए नहीं थे। उस दिन वो बलराम जी का जन्मदिन था, इसलिए द्रोणी मैया ने उनको रोक लिया कि आपको आज अभिषेक होना है, दान धर्म करना है, तो आप आज मत जाना। तो कृष्ण अकेले गए थे उस दिन। सो जब लौट के आए तो लौट के आने का एक विधि होता है, कैसे होता है, यशोदा माई खड़ी है, सब छोटी छोटी गोपियाँ खड़ी है, हाथ में दीपक है, उनके मिठाइयाँ फूल सब लेके खड़ी होती है। जब वो आते हैं तो उनको तिलक करते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनको आरती उतारते हैं, फिर वो मैया के गोद में भागते हैं, आज क्या क्या हुआ बताते हैं, सारा कार्यक्रम वैसे का वैसा ही है। नंद बाबा नंद बैठक पर नीचे, ऊपर से नीचे आए हुए हैं, जमीन के स्तर पर, पहाड़ से उतर कर उनके गोद में भाग जाते हैं दोनों भैया और चर्चा करते हैं क्या क्या हुआ। बलराम जी सुन रहे हैं, नंद कृष्ण भगवान बता रहे हैं, सब ग्वाल बाल बीच में बोल रहे हैं ऐसे हुआ वैसे हुआ, नॉर्मल जैसे रोज का होता है वैसे, कोई शंका का कोई काम नहीं है। और फिर सब ग्वाल बाल अपने अपने घर चले जाते हैं। इसका कारण यह है कि सभी जितनी भी माताएं थी ब्रज में, ब्रजवासी गोपियां थी, वो सभी इच्छा करती थी कि कृष्ण हमारे बालक हो जाए। ये सुखदेव जी महाराज आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, अपने बालक से अधिक दूसरे के बालक पर प्रेम कोई माता कैसे कर सकती है, इट्स नॉट पॉसिबल, वो शक्य नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन ये अद्भुत बात सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हर माता जो थी ब्रज की, वो उनके सबसे सबके बच्चे थे, सबके ग्वाल बाल थे, लेकिन फिर भी वास्तविक रूप में वो सभी माताएं अपने बालक से अधिक कृष्ण पर प्रेम करते थे और अपने बालक का द्वेष नहीं करते थे, लेकिन अपने बालक से कई गुना अधिक कृष्ण पर प्रेम करते थे और हमेशा ये तमन्ना करते थे कि कृष्ण मेरा बालक हो जाए तो कितना अच्छा है। वो यशोदा का ईर्ष्या नहीं करते थे, उसका द्वेष नहीं करते थे, लेकिन फिर भी एक शुद्ध मन से वो कृष्ण को अपने बालक के रूप में देखना चाहते थे। उसी तरह से सारी गोपियां जो थी, जो युवा अवस्था में थी, वो सभी गोपियां कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। कई प्रकार के व्रत भी उन्होंने किए थे। तो कृष्ण भगवान ने सोचा अच्छी बात है, चलो ब्रह्मा जी को अपनी परीक्षा करने दो, मुझे भी बाकी सारे बहुत सारे काम करने हैं, तो एक एक चीज़ के माध्यम से मैं बहुत सारे काम करूँगा। इस तरह से सब बछड़े और ग्वाल बाल बनकर पहुँच जाते हैं। कुछ दिन बाद नंद बाबा को कहते हैं, बाबा भाई बहुत अच्छा आकाश में तारे सितारे बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं, उनका जो समूह है वो शुभ है, ये गोपियों के विवाह के लिए बहुत बढ़िया है। पहले पूर्णमासी ने तो बात टाल दिया था, जब ही यशोदा माता ने वो हल्दी लगा दिया था तो बहुत उनको लगा कि अभी विवाह हो जाएगा तो वो परकीय भाव जो ब्रज का है वो नष्ट हो जाएगा। तो पूर्णमासी बड़ी ही चतुरता से, क्योंकि वो सब गोपियों के गुरु हैं, उनके पास ये प्रस्ताव जाता है कि इनका भी विवाह होना चाहिए राधा और कृष्ण का, तो बड़ी चतुराई से वो टाल देती है उस विषय को। उससे गोपियों की उत्सुकता और बढ़ जाती है उनके प्रति, अरे इतना अच्छा मौका था वो चला गया, अभी और कब मौका मिलेगा, तो भगवान भी वेट कर रहे हैं कभी इनकी इच्छा पूरी करें। अभी सभी बछड़ों के रूप में सभी गायों का दूध श्री कृष्ण स्वयं पी रहे हैं और सभी गायों को दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है, हजारों करोड़ों गुना अनंत गुना जितने अपने बछड़ों को देने पे हो रहा है उससे कई कई गुना अनंत गुना आनंद हो रहा है उनको इस कृष्ण के रूप जो बालक है बछड़ा है उसके रूप में पीने से। और एक बार क्या हुआ, वो बड़े गायों को बड़े गोप चरा रहे थे गोवर्धन के ऊपर, और बड़ी गाय जो है गोवर्धन के शिखर पर चल रही थी, गाय घास खा रही थी, और नीचे से कृष्ण भगवान जो है वो बछड़ों को चरा रहे थे। अभी वो सारे बछड़े कृष्ण हैं, सारे ग्वाल बाल कृष्ण हैं, हाँ, तो ऊपर जो गाय हैं वो अचानक देखते हैं कि हम भी चल रहे हैं ये भी चल रहे हैं, तो ये जो बछड़े चल रहे हैं उनको देख कर पूँछ उठा कर इतनी जोर से भागती है नीचे, एकदम डेंजरस, मतलब कभी भी गिर सकती हैं, इतने जोर से भागती है नीचे की तरफ। तो सब ग्वाल बाल हैरान हो जाते हैं, कैसे कंट्रोल करना है इनको, कंट्रोल नहीं कर पाते, इससे भागते हैं तेजी से, सीधे अपने बछड़े को मिलते हैं, उसको चाटने लगते हैं, बछड़े तो उनको लग जाते दूध पीने लगते हैं। तो सभी बड़े गोपों को आश्चर्य होता है, कैसे हमने कभी देखा नहीं है, इन्होंने अपने बछड़ों को कई बार देखा है चरते हुए यहाँ वहाँ, कभी ऐसे भागे नहीं है। और माताओं को भी देख रहे हैं बड़े गोप कि हमारी पत्नियाँ अपने बालकों को आजकल कितना प्रेम करती है, दिन भर बालों को सूंघती रहती है, चूमती रहती है, गले लगाती रहती है, चुम्मा देती रहती है, गोद में सुलाती रहती है, छोड़ नहीं पाती उनको, कितना दुलारती रहती है, इतना बड़ा प्रेम अचानक कैसे उनका आ गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इस बीच नंद बाबा के नेतृत्व में, राजा है ना वो नंद बाबा, सभी गोपों के साथ विवाह हो जाता है। इसका मतलब कृष्ण के साथ सभी गोपियों का विवाह हो जाता है और एक पूरा साल पृथ्वी लोक का जो ब्रह्मा जी का एक क्षण है, सारी गोपियां कृष्ण की वधू बनकर विवाहित होकर अपने घर में रहती हैं और कृष्ण की पति पत्नी होने का आनंद का अनुभव करती है, कृष्ण को अपना बनाने का आनंद अनुभव करती है। और वो एक साल असली जो ग्वाल बाल थे वो ब्रह्मा जी के लोक में गुफा में बंद है, सम्मोहन मतलब उनको हिप्नोटाइज किया गया, निद्रा में बंद कर दिया उन्होंने, बछड़े भी और ग्वाल बाल भी। और एक साल के बाद मतलब यहाँ के एक साल के उनके एक क्षण के बाद वो लौट के आके देखते हैं, देखे सही क्या चल रहा है, तो क्या देखते हैं, वही सीन है पूरा। तो ऐसे ही कमलाकार बैठे हुए हैं, ऐसे ही जूठन खा रहे हैं, अरे पता नहीं ये लोग कुछ योगी वोगी है क्या, कुछ सिद्धि विद्धि प्राप्त कर लिए। तो मैं जब वापस लौट के आता हूँ तो शायद वो ये भी निकल के आते होंगे यहाँ पर, तो दोबारा जाके देखते हैं तो उधर भी सोए हुए हैं, फिर आके देखते हैं। भागवत में वर्णन दिया है कि वो एक ही बार आके भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन पुराण में वर्णन दिया है कि कई बार अप डाउन करते हैं वो, हर बार वहां पर भी देखते हैं बछड़ों को और ग्वाल बालों को, हर बार यहां पर भी बैठे हुए आनंद लेते हुए, एक्शन पैक ड्रामा। वहां पर तो सो रहे हैं, यहां पर तो पूरी एक्शन है कंप्लीट। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। आप सोच सकते हैं ब्रह्मा जी जो है ना वो चतुर्मुखी है, मतलब उनके चार स्कल मतलब चार शीश है, उनके चार मेंदु है, चार दिमाग। हमारा तो एक ही दिमाग है, एक दिमाग में दो हिस्से हैं, उनके चार दिमाग में आठ हिस्से हैं। और वो ऐसा दिमाग है कि उस दिमाग में पूरे ब्रह्मांड को निर्माण करने का सॉफ्टवेयर फिक्स किया हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी योनियां हैं उनको कैसे निर्माण करना है, उनके कर्मों के अनुसार कैसे उनको पाप पुण्य का फल देना है, कहाँ कहाँ छोड़ना है उनको, कितना लंबा आयु देना है, क्या बुढ़ापे में मिलेगा, क्या जवानी में मिलेगा, क्या बचपन अवस्था में क्या मिलेगा, सारा ही पूरा पैकेज जो है ना उनके यहाँ पर बैठा हुआ है। और वो हो गई चर सृष्टि यानी कि जीव सृष्टि, एक होती है अचर सृष्टि यानी कि पृथ्वी और वो नदियाँ और पहाड़, उनका निर्माण, वो सारा जो निर्माण है पूरा कंप्लीट सृजन जो है, तो प्रभु जी बता रहे थे सृजन के बारे में, वो सारा दिमाग जो है जरूरी जितना है वो सब उनके आठ चार शीश में बसा हुआ है। मतलब इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ बुद्धि जो है वो ब्रह्मा जी है। ऐसा कहते हैं कि मूर्तिमान बुद्धि है वो, एक्चुअली पर्सोनिफाइड इंटेलिजेंस, ऐसे दिव्य बुद्धि है उनकी। वो बुद्धि पूरी तरह से भ्रमित हो गई उस समय, देखते रह गए। और उनके भ्रम को और बढ़ाने के लिए अचानक जो कमलाकार बैठे हुए हैं, एक एक व्यक्ति उसके अंदर जो बैठे हुए हैं वो सब विष्णु बन जाते हैं, उनके भ्रम में और भर जाती है और अधिक भ्रम पैदा होता है। पहले से भ्रमित है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, उसमें से देखते हैं कि अभी कृष्ण के बीच में कृष्ण है और जितने ग्वाल बाल है, जितने बछड़े हैं, सब विष्णु बने हुए हैं। और उनके भ्रम में अधिकता बढ़ाने के लिए क्या देखते हैं, वो हर एक विष्णु के पास 33 करोड़ देवता जो है वो उसका पूजन स्तुति पूजन कर रहे हैं उनका। हमको तो वो कल्पना करना मुमकिन नहीं है, एक तो इतने करोड़ों बाल बाल बैठे हुए हैं, अभी वो हर एक विष्णु बैठे हुए हैं और हर एक के पास में एक सेट है 33 करोड़ देवताओं का, वो उनका भजन पूजन जो भी उनके सेवा कर रहे हैं। हर एक के पास वो ब्रह्मा जी भी खुद है वहाँ पर, शिव जी भी है और इंद्र आदि देवता भी हैं, इतना ऐश्वर्य के साथ में उसके सेंटर केंद्र स्थान में श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं। तो वो एकदम भ्रमित हो जाते हैं, पूर्णता भ्रमित, सारे चारों दिमागों का आठों हिस्से जो है पूरी तरह से सोच नहीं सकते क्या हो रहा है। उतने में अचानक सारे गायब हो जाते हैं, सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े, जितने विष्णु स्वरूप हैं, सारे देवताओं का सेट सब गायब हो जाता है और केवल एक बालक कृष्ण बचता है जो ढूंढ रहा है, हाथ में वो माखन और वो चावल लेकर मिठाई लेकर ढूंढ रहा है, मेरे ग्वाल बाल और बछड़े कहाँ गए। तब वो समझ जाते हैं कि मेरे चार दिमागों को भ्रमित करने वाला व्यक्ति केवल एक ही है, वो है परम भगवान, और कोई देवता में और कोई अन्य जीव में शक्ति नहीं है कि मेरे जैसे दिमाग को भ्रमित कर सके। और तब वो जाकर तुरंत नतमस्तक हो जाते हैं, माफी मांगने लगते हैं। तो भगवान उनको कहते हैं कि दोबारा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बड़ी स्तुति करते हैं भगवान की, तुरंत सारे ग्वाल बालों को वहां पर लाके खड़ा कर देते हैं, वापस कर देते हैं उनको, माफी मांगते हैं उनकी। भगवान को बड़ा दुख हुआ था उस समय, क्योंकि उन्होंने अपने सारे भक्तों से उनको अलग कर दिया था, अपना जो भी भ्रम था उनका, जो भी उनका अहंकार था, उसके अंदर उन्होंने भगवान को सारे भक्तों से अलग कर दिया। तो भगवान बड़े नाराज थे, लेकिन ब्रह्मा जी स्तुति करते जा रहे हैं पश्चाताप में, तो सुन रहे हैं वो। बृहद भागवतम में बताते हैं वो कि ये देवता लोग कई बार आते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, मेरी लीला में व्यवधान करते हैं, फिर बाद में माफी मांगते हैं, फिर स्तुति करते हैं, तो मुझे सुनना पड़ता है, लेकिन मुझे उनके स्तुति में 1% का भी इंटरेस्ट रहता नहीं है। मेरा मन तो मेरे बालकों के साथ खेल में रहता है कि कब ये स्तुति समाप्त करेगा और कब मैं जाके दोबारा खेलूंगा उनके साथ। उनको तो पता नहीं है क्या हो रहा है, कहाँ गए बीच में उठ के, लेकिन मुझे मेरा कर्तव्य करना है। मेरा ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं तो सुनना पड़ता है मुझे। लेकिन बृहद भागवत में साफ साफ बताया है कि इन देवताओं की स्तुति में उनके बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है अपने ग्वाल बालों के साथ खेलने में, चाहे वो कितने भी तुच्छ खेल क्यों ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब ग्वाल बाल कहते हैं अरे तुम हार रहे हो, तुझ भाग रहे हो, कल तुमको खेल में लेंगे नहीं हम, तो कहते हैं कि कृष्ण के लिए सबसे बड़ी धमकी है वो। अगर ग्वाल बाल बोलते तो कल खेलने में लेंगे नहीं आपको, सो बिगेस्ट थ्रेट टू कृष्ण। तो ऐसे ब्रह्मा जी स्तुति करते जाते हैं और बाद में ब्रजवासी लोग अपने वो लोकवदंती में कहते हैं कि सारी स्तुति करने बाद भी भगवान ने उनको माफ़ नहीं किया। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रज रज का आश्रय लिया और पूरे ब्रज का दंडौती परिक्रमा किया, तब जाकर उनको माफ़ी मिली है। लेकिन ब्रह्मा जी सही रूप में पश्चाताप का अनुभव कर रहे थे, सही रूप में। उनको लगा था कि क्या फ़ायदा है मेरे ब्रह्मा बनने का, मैं इस पूरे ब्रह्मांड का पहला नागरिक हूँ, द फर्स्ट सिटीजन, जिसको भगवान ने निर्माण किया। जैसा हम बोलते हैं ना कि मुंबई का जो मेयर है वो पहला नागरिक है मुंबई का, और महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र का प्रथम नागरिक है, और देश का प्रधानमंत्री जो है देश का प्रथम नागरिक है, अमेरिका का अध्यक्ष अमेरिका का प्रथम नागरिक है, वैसे इस ब्रह्मांड का प्रथम नागरिक श्री ब्रह्मा जी हैं। और सबसे बड़ा अधिकार, सबसे अधिक अथॉरिटी उनको दे के रखी है। तो वो सोच रहे हैं धिक्कार है मेरे पद का, धिक्कार है मेरे दिमाग का, धिक्कार है मेरे अधिकार का, मेरे कार्य का, मेरे पोजीशन का, क्योंकि इतना सब होने पर भी मैं मेरे भगवान को पहचान नहीं पाया। ऊपर से कसौटी किया उनका मैंने, भक्तों से अलग कर दिया, अपराध किया मैंने उनका, नहीं चाहिए मुझे। तो बड़े अच्छे गीत गाते हैं वो, कहते हैं कि नहीं चाहिए मुझे ये पद, मुझे आश्वासन दो भगवान कि मुझे अगली बार आप नई ब्रह्मा बनाओगे, मैं तुच्छ बनना चाहता हूँ। तो भगवान ने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन उनका दिल नहीं भरा। वो वहाँ से उड़े और कुछ ही देर में उसी वृंदावन में दोबारा उतरे। भगवान ने वैसे प्रार्थना हुई, रोना धोना धोना हुआ, पश्चाताप हुआ, सब कुछ हुआ, भगवान ने माफ़ कर दिया, एवरीथिंग फाइन। वापस जाने लगे तो उनका दिल नहीं करता वापस जाने का ब्रह्मा लोक में, उसी वृंदावन में दोबारा उतर जाते तुरंत और एक जगह बैठ कर रोते हैं। आप लोग गए कोई इस जगह पर? उसका नाम ब्रह्मकुंड है, अभी उसका जीर्णोद्धार भी हुआ है, बहुत सुंदर जीर्णोद्धार हुआ है। वो इतना गहरा है कि मैंने जब देखा था उसको तो वो कम से कम 5-6 मंजिल की बिल्डिंग गहरा है, इतना बड़ा और विशाल है वो कि हमारे ऐसी बिल्डिंग जो है वो 10-15 बिल्डिंग उसमें रह सकती है, इतना बड़ा कुंड है वो। तो वो केवल उनके 8 आँखों से निकलने वाले पश्चाताप के अश्रुओं से बना हुआ था। इतना रोए वो पश्चाताप में कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, क्या फ़ायदा है मेरे ब्रह्मा बन के, इतनी बुद्धि, इतना कुशलता, इतना स्किल, इतना अधिकार, इतना पोजीशन, इतना पद, क्या लाभ क्या है उसका, उपयोग क्या, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं है तो व्यर्थ है वो सब कुछ। हम जिस पर गर्व करते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, अगर भगवान की सेवा में नहीं, भगवान की सेवा में व्यवधान लाने वाला है तो व्यर्थ है वो मेरे जीवन के लिए, मेरा जीवन भी तुच्छ है उसकी वजह से। पश्चाताप कर रहे हैं, हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं। फिर वो रोते हैं, वो कुंड बनता है ब्रह्म कुंड जो ब्रह्मा जी के पश्चाताप के अश्रुओं से बना है। फिर वहाँ से उड़ते हैं वो और उड़ते हैं आगे, फिर पृथ्वी पर उतर जाते हैं। अभी भी उनका दिल नहीं भरता है कि मैंने कैसा कार्य किया, 1 साल पृथ्वी का, चाहे मेरा एक क्षण हो, लेकिन पृथ्वी का 1 साल तक मैंने भगवान को अपने ग्वाल बालों से बछड़ों से विरह में रखा। तो एक जगह उतरते हैं और वहाँ पर रो रो कर तपस्या आरम्भ करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये जो मैंने किया है इसका पक्का इलाज होना चाहिए, मैं ऐसे वापस लौट नहीं सकता ब्रह्मा लोक में, मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे गारंटी मिले कि इसका इलाज होगा, इसका उपाय होगा और दोबारा मैं ब्रह्मा नहीं बनूंगा। तो वहाँ बैठ के तपस्या करते हैं। देखिए इस दुनिया में हम सब लोग कुछ व्रत करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, कुछ साधु लोग जंगल में जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, वो किसके लिए करते हैं? जिस पद पर वो है उससे उनको और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति की अपेक्षा होती है, मतलब भौतिकता से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से उनको प्रगति करनी होती है। आज अगर नौसिखी अवस्था में है तो प्रगत भक्त बनना चाहते हैं, अगर प्रगत भक्त है तो भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, और धाम में गए तो भगवान की सेवा चाहते हैं। आज जो स्थिति में उससे भी उच्च स्थिति के लिए कोई तपस्या करता है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अगर उच्च पद पर है तो नीचे आने के लिए तपस्या नहीं करता है। कभी सुना है क्या आपने? हम लोग भी अपना ऑफिस में मेहनत करते हैं, प्रमोशन के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैनेजर हूँ, मैं अभी एक एग्जाम दूंगा, मैं चपरासी बनना है अभी। जैसे चपरासी एग्जाम देके कैशियर बनता है बैंक का, फिर कैशियर हो क्लर्क बनता है। कोई ऊपर मैनेजर जो है वो चपरासी बनने के लिए एग्जाम देता नहीं है पढ़ाई करके। यहाँ पर ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठे हुए हैं कि मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। सब लोग ब्रह्मा बनना चाहते हैं दुनिया में, सारे देवता लोग भी ब्रह्मा जी भी बनने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं कि उनको ब्रह्मा जी नहीं बनना है, उनको ऐसा बनना है, एकदम तुच्छ बनना है, इसका कोई पद ना हो, कोई मान सम्मान ना हो, कोई जान पहचान ना हो किसी की, कोई अधिकार ना हो, कोई शक्ति ना हो, केवल भगवान की सेवा हो बस। तो बहुत देर तक तपस्या करते हैं ऐसे। और एक उदाहरण शास्त्र में, उद्धव जी, वो भी भगवान के बहुत निकट थे। उनका पद तो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। कैसे? ब्रह्मा जी तो अपना काम अपने लोक में बैठ के करते, जैसे कि बड़ा ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन जो मालिक है वो और कहीं बैठा हुआ है। ये तो मालिक के साथ में बैठे हुए हैं, किसी हंसते खेलते मजाक, खाना पीना, शिकार, सोना, राजमंत्रणा करना, सब कुछ उद्धव जी करते थे। और जब गोपियों को देखा तो वो क्या बोले, अरे बाप रे, मैं तो समझता था कि मैं ही भगवान से इतना निकट हूँ, इतना निकट और कोई नहीं है। लेकिन ये गोपियाँ इतनी दूर शरीर से होने पर भी मुझसे कई गुना भगवान से निकट हैं। तो वो चले गए, काम पूरा किया, द्वारका लौटे, मैसेज दिया भगवान को, ऐसा रिपोर्ट दिया, बोले मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं ब्रज वापस जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मैं वहाँ पर तपस्या करके तृण का पत्ता बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब ब्रज गोपियों का अनुभव किया, उनके भक्ति का, तो मुझे लगा कि इनके चरणों के रज मुझे मिलने चाहिए। और मैं राज दरबार का आदमी हूँ, आपके जैसा मेरा शरीर भी है, रंग भी आप जैसा है, कृष्ण जैसा शरीर था उसका, तो मैं अगर मांगूंगा चरण के रज तो वो देने में संकोच करेंगे, वो तो गांव की लड़की है, मैं तो राज दरबार का व्यक्ति हूँ, तो मुझे उनको संकोच भी नहीं कराना है। मैंने देखा है कि वो ब्रज गोपियाँ तृण के पत्ते पर बड़े आसानी से पैर रखती हैं, कोई संकोच नहीं होता। तो मुझे वो तृण का पत्ता बनना है जिस पर वो सहजता से अपना पाँव रखेंगी बिना संकोच के, और मुझे उस तरह से उनकी कृपा मिलेगी और उनकी भक्ति का एक अंश मेरे को प्राप्त होगा, तो मेरा जीवन धन्य होगा। तो वो बड़े श्रेष्ठ पद पर, जिसके आगे कोई और प्रगति नहीं है उनके लिए, क्या करना क्या आगे उसके, अभी भगवान इतने बड़े मित्र हो गए तो क्या करना है आगे। वो व्यक्ति उनका संग छोड़कर ब्रज में गए और तृण का पत्ता बने, आज भी तृण का पत्ता बनकर रहे, वहाँ पर रहते हैं गुलमलता। तो एक और भी उदाहरण, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं और बहुत साल तपस्या करने के बाद उनको भगवान दर्शन देते हैं। किस रूप में देते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अभी तक कलयुग नहीं आया है, तो द्वापर युग ही चल रहा है, कृष्ण भी लीला कर रहे हैं ब्रज में, माधुर्य में लीला कर रहे हैं। उस समय श्री गौरांग महाप्रभु तपस्या करने वाले ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि अगले युग में मैं इस रूप में अवतार लेने वाला हूँ, इस रूप में मैं भी भगवान के रूप में आने वाला नहीं हूँ, मैं भी भगवान के भाव में नहीं आने वाला हूँ, मैं एक भक्त के भाव में आने वाला हूँ, छन्न रूप में आने वाला हूँ, कोई व्यक्ति मुझे जानेगा नहीं, किने चुने लोग जानेंगे, लेकिन आम जनता मुझे पहचानेंगे नहीं कि भगवान हूँ मैं। मेरा काम होगा भगवान का भक्त के रूप में, भगवान का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर वो सब में प्रचार करूँगा मैं। उस समय तुम एक यवन कुल में, एक घटिया कुल में जन्म लोगे, लेकिन भगवान का नाम इतना लोगे कि घटिया कुल में जन्म होने पर भी, यवन कुल में जन्म होने पर भी नाम आचार्य के रूप में आपका, आपकी ख्याति होगी। इतना विरोधाभास होगा, आपका कुल एकदम घटिया होगा, लेकिन फिर भी आप नामाचार्य के रूप में नाम को पढ़ाने वाले, नाम की शिक्षा देने वाले, नाम की प्रेरणा देने वाले आचार्य बनेंगे। तब जाकर ब्रह्मा जी शांत हो गए कि हाँ अभी भाई, ये पोजिशन जो है एकदम मिस्टर जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुल भी ऐसा है कि कुल का भी कोई गर्व करने का काम नहीं है, कोई अधिकार नहीं, कोई पद नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई बात नहीं, दिस इज बेस्ट। तो पूरी तरह संतुष्ट होकर वो अपने हंस पर बैठकर ब्रह्मा लोक चले गए। और वो पता है वो जगह कौन सी है जहाँ पर तपस्या किया उन्हें? वही योगपीठ है जहाँ पर आगे जाकर निमाई ने जन्म लिया, वही जगन्नाथ मिश्रा का घर है जहाँ पर ठाकुर भक्ति विनोद ने मंदिर बनाया है। 1902 में उसका उन्होंने उद्घाटन किया, फिर 1937 में उनके बालक ठाकुर भक्ति सिद्धांत ने उसका जीर्णोद्धार किया है 1937 में। वही जगह है जहाँ पर वो गौर कुंड है, जहाँ पर नरसिंह भगवान का मंदिर है, जहाँ पर क्षेत्रपाल शिव है, जहाँ पर भगवान का नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ है योगपीठ, उसी जगह पर ब्रह्मा जी ने उतर कर तपस्या की थी और उसी जगह पर ब्रह्मा जी को गौरांग महाप्रभु का दर्शन हुआ था साइमल्टेनियसली जब भी वहाँ पर भगवान लीला कर रहे हैं द्वापर युग के समय। और वही ब्रह्मा जी फिर श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर आने के पहले फुलिया गांव में उनका जन्म होता है और यवन कुल में जन्म लेने से सही भी उनको कृष्ण के नाम के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है और जन्म से ही वो अपने गांव में भगवान का नाम उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत लंबी कहानी है उनकी, संक्षेप में कहते हैं कि वो उनका नाम का महिमा, उनका नाम का आकर्षण, नाम की रति, नाम का प्रेम इतना श्रेष्ठ था उनका कि उनके जाति के लोग उनकी निंदा करते थे, कैसे हो तुम, तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है और तुम किस भगवान का नाम ले रहे हो। फिर भी वो बोलते जा रहे हैं। एक जगह उनका मारने का समय आता है, बोले आपको मार देंगे क्योंकि आप धर्म भ्रष्ट हो। तो कहते हैं कि आप मार सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे शरीर का आप 1000 हिस्सा करेंगे और उस हर एक हिस्से का 1000 हिस्सा करेंगे, फिर भी वो एक एक हिस्से से जो आपने किया हुआ है आपको हरिनाम सुनाई पड़ेगा। बहुत सुंदर बांग्ला में श्लोक है, मुझे याद नहीं वो, लेकिन बहुत सुंदर और बहुत पावरफुल श्लोक है वो। मैं बड़े विश्वास के साथ, बड़े निर्भयता के साथ उस समय के राजा के सामने बैठकर वो बोलते हैं, मारो मुझे आप, खंड करो मेरे शरीर का, एक एक बूंद मेरे शरीर की हरिनाम से गूंजेगी, तो क्या फायदा मार के मुझे, मैं मरूंगा लेकिन हरिनाम चिरंजीवी हो जाएगा। तो फिर उसको बोलते मारो इसको, तो 22 मार्केट के जगह पर बाजार हाट है ना, तो चाबुक से मारने का आदेश देते हैं। आमतौर पे 2 जगह पर कोई चाबुक खाता है, कोड़े खाता है तो वो मर जाता था आदमी। 1 हो गया मार्केट, 2 मार्केट हो गए, 3 मार्केट भी हो गए, सब जगह उनको पीटा जा रहा है। 22 मार्केट हो गए, मारने वाले थक गए, तब भी उनके मुंह से भगवान का नाम जो है वो बंद नहीं हो रहा है और वो मारने वाले जल्लाद चिल्ला रहे, चुप रहो, बंद करो, भगवान का नाम बंद करो, लेकिन बोलते जा रहे हैं, मार खाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। आखिर में मारने वाले थक जाते हैं, उनके पास मारने के लिए कोई शक्ति नहीं बचती, क्योंकि 2 बार मारने के बाद लोग मरते थे तो उनको वो जोश वैसा ही रहता था उनका, ये तो पूरा जोश खत्म उनका, और वो डरते हैं और हरिदास को बोलते हैं, हरिदास जी महाराज, अभी आप नहीं मर रहे तो हमको मरना होगा, क्योंकि हमने अपना कार्य पूरा नहीं किया तो राजा कहेगा अभी तुम्हारा वध करूंगा मैं, तुमने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया। तो हरिदास जी कहते हैं, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, अगर मुझे पहले ऐसे पता होता कि आपको मरना पड़ेगा तो मैं पहले कभी बहुत पहले मर चुका होता। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई, अभी मैं मर जाता हूँ। तो बैठ जाते हैं और बैठकर अपने योग बल से ऐसी अवस्था में जाते हैं जैसे कि खत्म, धक्का देते हैं, गिर जाते हैं। तो उनको उठा के बड़ी खुशी से, चिल्लाते हुए खुशी से उठाकर राजा के दरबार में लेके जाते हैं। तो राजा देखो ये लो, इसको हमने मार दिया। राजा बड़ा खुश हो जाता है, तो ले जाओ इसको, इसका क्या किया जाए। तो नहीं, इसको नदी में फेंका जाए, कोई सम्मान प्राप्त नहीं होना चाहिए, कोई समाधि नहीं बननी चाहिए, कोई वहाँ पर उसका वैसे कोई आगे जाके प्रार्थना करेगा उनके लिए उसका स्थान मिलेगा, उसका तुच्छ रूप से उसके शरीर का क्रिया होना चाहिए। तो तुच्छ रूप एक ही है, नदी में फेंक दो, गंगा जी में मछलियाँ खा जाएगी तो उसका नामो निशान नहीं बचेगा। तो ये उनको उठाने को जाते हैं तो जिसको उठा के लेके आए तो उसको उठा नहीं पाते हो, इतना भारी बन जाते हो, कितने लोग आके जल्लाद उठाते हैं, कितने लोग आके हाथ लगाते हैं, उठा नहीं सकते उनको। फिर अचानक उठ जाते हैं, मतलब जगते नहीं हैं, उनसे उठ जाते हैं, उनको उठकर फिर वो गंगा जी में फेंक के आते हैं। अभी जब ये संवाद जब हो रहा था ना उनका कि आप मुझे काटो और मेरे शरीर का हर एक कण जो है काटने के बाद भी हरि नाम बोलेगा, पर अच्छा इतना तुम्हारा हरि नाम पावरफुल है, देखते हैं अगर तुम कोड़े से बचोगे तो हम आपके हरि नाम को मानेंगे। लेकिन देखते तो क्या मर गया हो, कैसा हरि नाम, कुछ हरि नाम कुछ नहीं। कुछ देर बाद में, कुछ दिनों के बाद में, नदी में गिरने के बाद में या वापस होश में आते हैं, नदी किनारे आते हैं, वापस चालू हरि नाम, तब देखकर वो सब खबर फैल जाती है कि ये तो वापस आ गया, वो देखो नाच रहा है, सब गांव में जा रहा है। तो फिर वो राजा, उसका प्रधान, उसका जो मंत्री, वो सब भाग के आते हैं, चरणों में गिर जाते हैं कि आज हमने मान लिया कि आपके हरि नाम में कुछ शक्ति है। हमने तो सोचा था आप मर गए, लेकिन आप इतने कोड़े खाने के बाद भी जिंदा होकर लौट के आए, इस पर हमको यकीन नहीं हो रहा है, ये सब आपके हरि नाम का बल है। राजा उसके शरण जाता है, राजा शिष्य बनता है उनका, मंत्री शिष्य बनते हैं, सब उसके सहकारी शिष्य बन जाते हैं उनके। वो हरिदास ठाकुर दिन में 300,000 भगवान के नाम का जप करते थे, आज के हिसाब से 192 माला करते थे, और उनके गति से उनको 22 घंटे लगते थे रोज करने के लिए। हम करने बैठेंगे तो 24 घंटे से ऊपर लगेंगे हमको, लेकिन वो 100,000 जोर से करते थे, 100,000 क्या कहते हैं उसको, उपांश यानी सॉफ्टली करते थे, मृदु आवाज में, और 100,000 मानसिक मन में करते थे, और कुल मिलाकर उनको 22 घंटे में उनका जप होता था। तो वेश्या आती है उनकी परीक्षा करने के लिए, उनकी ख्याति इतनी बढ़ती है, उनके शत्रु बढ़ते हैं, उसके द्वेष करने वाले बढ़ते हैं, उनकी ख्याति कीर्ति को नष्ट करने के लिए वेश्या को भेजते हैं, वेश्या भक्त बन जाती है, वेश्या दीक्षा लेती है उनसे। उसके बाद महामाया स्वयं पार्वती देवी जो है वो भी उनको प्रलोभन करने के लिए पहुंच जाती है, और महामाया भी उनकी शिष्या बन जाती है। साक्षात बहिरंगा शक्ति कृष्ण भगवान की, जो सारे सृष्टि को नियंत्रण करती है, हर जीव को बांध के रखती है माया के अंदर, अपनी शक्ति के अंदर, वो महामाया भी उनकी शिष्य बनती है। इतने महान थे हरिदास ठाकुर, और वो हरिदास ठाकुर कई लीलाएं उनकी, कई कथाएं उनकी, उनके हरिनाम के प्रभाव की। आखिर में वृद्ध हो जाते बहुत, और हरिदास ठाकुर पहले फुलिया में थे मायापुर के पास, फिर जब महाप्रभु जाते हैं जगन्नाथपुरी में तो वो भी जगन्नाथपुरी जाते हैं, और महाप्रभु जी जितने भक्तों को लेकर जगन्नाथपुरी जाते हैं सबको अपने अपने घर की व्यवस्था करते हैं। राजा प्रताप रुद्र जो है वो सभी बंगाली वैष्णवों को उनके निवास, परमानेंट निवास की व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की सब व्यवस्था करते हैं। हरिदास ठाकुर जानबूझ के बाद में आते हैं, इतने नम्र थे वो, इतने नामाचार्य बड़े आचार्य होने पर भी इतने नम्र थे वो। वो कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही कुल का हूँ कि मेरी छाया भी इतनी अशुभ है, और ये तो जगन्नाथपुरी है, यहाँ के, यहाँ तो जगन्नाथपुरी में आप लोगों जहाँ पर रहने का इंतजाम आपका हुआ है वहाँ तो जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ के पुजारी आगे पीछे जोलते रहते हैं इधर, और मैं इनके बीच में रहूँगा तो मेरी छाया उन पर पड़ेगी तो जगन्नाथ की पूजा भी भ्रष्ट हो जाएगी, तो मुझे आप जंगल में रहने की व्यवस्था कर। तो सबकी व्यवस्था करने के बाद स्वयं चैतन्य महाप्रभु जंगल में जाकर एक बकुल का डंडी लेते हैं और ऐसे जमीन पर घुसा देते हैं, और कुछ ही क्षणों में एक बकुल का पेड़ पैदा होता है उसमें, और वहाँ पर बैठे, यहाँ पर आप यहाँ पर रहो। दूर शहर से, जगन्नाथ मंदिर से, बाकी सारी बस्ती से, वैष्णवों से दूर, मतलब मैं, मेरा जीवन इतना पतित है कि मेरा छाया भी लोगों के लिए अशुभ है, दर्शन तो दूर मात्र की बात है, इतने नम्र थे वो। और वहाँ बैठ के भजन करते थे, और वहीं पर वैश्या ने उनका परीक्षा किया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हर रोज सुबेरे 2 घंटा गायब होते थे, सीधे गंभीरा से उतरकर महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने के मंदिर जाते थे, और वहाँ से सीधे किसी को न बताते हुए, किसी को साथ में ना लेते हुए सीधे वो बकुल के पास पहुँचते थे, जिसका नाम अभी सिद्ध बकुल हो गया था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लगाया हुआ पेड़ हरिदास ठाकुर द्वारा भजन करने के बाद सिद्ध हो जाता है, बकुल का पेड़ भी स्वयं। तो सिद्ध बकुल के पास में पहुँचते हर रोज, और 2 घंटा सुबह का समय महाप्रभु चैतन्य हरिदास ठाकुर के साथ बिताते थे। इसका मतलब जिस जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए एक बार भी हरिदास ठाकुर ने गए, वो स्वयं जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में रोज उनको दर्शन देते थे, और जगन्नाथ का महाप्रसाद भी लेकर उनको खिलाते थे। ऐसे बहुत साल बीतते हैं, क्योंकि 18 साल का चैतन्य महाप्रभु का निवास है जगन्नाथपुरी में, तो तब तक तो वो बूढ़े हो जाते हैं, वृद्धावस्था में, बहुत सीनियर थे वो, कम से कम 30-35 साल बड़े हैं वो चैतन्य महाप्रभु से। महाप्रभु तो युवा अवस्था में थे वैसे, मध्यम अवस्था में, और ये वृद्धावस्था में थे। तो जब बड़े वृद्ध हो जाते हैं तो एक दिन वो चैतन्य महाप्रभु सवेरे के समय रोज जैसा महाप्रसाद लेकर उनकी कुटिया पे आते हैं और कहते हैं, हरिदास क्या खबर है आज की? तो हरिदास कहते हैं, जो भी कृपा आज करेंगे आप वही आज की खबर होगी। टुडेज हेडलाइंस विल बी वॉट एवर मर्सी यू विल गिव मी। आज जो भी कृपा करेंगे वही आज की खबर होगी। तो ये कहते हैं, ये लो महाप्रसाद खा लो। बोलते तो नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता। बोले क्यों? जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तो बिना मूल हुए भी खाना चाहिए और तुम बोल रहे कि नहीं खा सकते हो। नहीं नहीं भगवान, मैंने अब तक मेरा जप नहीं पूरा किया है, मेरा जप अब तक पूरा नहीं हुआ है, और जप पूरे किए बिना मैं कुछ खा नहीं सकता, इसलिए मैं ये जो मटका है उसको शीश पे लगा सकता हूँ और फिर जप करूँगा। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हरिदास अभी बस, अभी आप और जप करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप तो नाम के आचार्य हो, आपने नाम को सिद्ध कर लिया है, आप स्वयं नाममय हो और अभी नियम नियम करने की जरूरत नहीं, अभी आप खा लो महाप्रसाद। बोले नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता उसको, मैं नहीं खा सकता। महाप्रभु आग्रह करते हैं उनको। फिर और कुछ दिन बीतते हैं, फिर महाप्रभु जी का लीला समाप्त होने का समय पास में आ रहा है, किसी को पता नहीं है, लेकिन ठाकुर हरिदास को इसकी अनुभूति होती है कि बहुत ही जल्द गौरांग महाप्रभु अपनी पृथ्वी की लीला को समाप्त करके लौटने वाले हैं, और वो बड़ी बुढ़ी अवस्था में रहते हैं हरिदास ठाकुर। तो एक दिन कहते हैं, महाप्रभु जी मैं भी समझ रहा हूँ, अंदर मेरे हृदय में ये अनुभूति हो रही है कि आप बहुत ही जल्द यहाँ की लीला समाप्त करके जाने वाले हो। तो कहते हैं, आपकी क्या इच्छा है? वो कहते हैं कि वो मुझे देखना नहीं है कि आपकी लीला समाप्त होगी यहाँ की, वो मुझे दर्शन नहीं करना है, उसके पहले मुझे जाना है। वो कहते हैं कि जब आप जैसे व्यक्ति कोई इच्छा करते हैं तो कृष्ण भगवान को इच्छा पूरी करनी होगी, मैं तो उनका दास हूँ, भगवान कह रहे हैं स्वयं, मैं तो कृष्ण का दास हूँ, जो भी आपकी इच्छा है पूरी हो जाएगी। वो कहते हैं, मेरी ऐसी इच्छा है कि आपके चरण कमल मेरे दोनों हाथों से पकड़कर मेरे छाती पर हो, आपका मुखमल मेरे आंखों के सामने हो, मेरे मुख पर आपका नाम हो, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, और उस अवस्था में मुझे जाना है। तो फिर कुछ दिन बाद महाप्रभु चैतन्य आते हैं, महाप्रसाद लेकर आते हैं, तो उस समय ये जप करते बैठे रहते हैं। जैसे ही आते हैं सब लोग बैठ रहे हैं जप कर रहे हैं, तो ये उठते हैं अपनी जगह से और सभी वैष्णवों को दंडवत करते हैं। उनको दंडवत करने को इतना कष्ट हो रहा है क्योंकि शरीर तो इतना वृद्ध अवस्था में है, वो झुक नहीं सकते हैं किधर, लेकिन फिर भी एक बालक वैष्णव जो है उसको भी दंडवत कर रहे हैं, साथ वाले हैं उनको दंडवत कर रहे हैं, गुरु भाइयों को कर रहे हैं, जितने भी वैष्णव हैं वो सबको दंडवत कर रहे हैं। भागवत में ध्रुव जी का भी वर्णन ऐसा आता है, जब ध्रुव जी का भगवान के समय धाम में जाने का समय आया तो उन्होंने सभी वैष्णवों को प्रणाम किया, जो उनके बालक समान थे उनको भी प्रणाम किया। वो कहते हैं कि भगवान के धाम के जाने के समय जो भी वैष्णव है, चाहे उम्र से बड़े हो छोटे हो, सबकी कृपा आवश्यक है, तो वो सारे जूनियर्स को प्रणाम करते हैं, अपने अपने बच्चों को भी प्रणाम करते हैं, और फिर भगवत धाम जाते हैं ध्रुव महाराज। उस तरह से ठाकुर हरिदास ठाकुर जी सबके लिए वंदनीय थे, वो उनका रोम रोम हरिनाम में बसा हुआ था, सब लोग उनके आशीर्वाद की अपेक्षा करते थे, लेकिन सभी वैष्णवों का चरण छुकर उन्होंने प्रणाम किया और फिर वो महाप्रभु चैतन्य के पास आए। महाप्रभु जी पेड़ के नीचे ऐसे चबूतरे पर बैठे हुए थे, तो भक्त जो है वो समझ जाते हैं उनकी क्या इच्छा है, तो उनको ऐसे लेके आते हैं उनके चरण कमल में, समझो ये चबूतरा है, तो उनको नीचे लेके जाते हैं जहाँ पर वो पैर छोड़ के बैठे हुए हैं, पैर के पास लेके आते हैं उनको ऐसे गोद में लेकर, ऐसे बूढ़े शरीर को, और फिर महाप्रभु जी के चरण जो है वो उठाकर अपने सीने पे लगाते हैं, ऐसे सीने पे लगाते हैं जैसे कि महाप्रभु ने सीने पे चरण रखे हों, ऐसे ऐसे लगाते हैं दोनों हाथ से, और मुख से ऐसे देख रहे हैं उनके मुख कमल को, उनके आंखों से अनंत नदियों की तरह अश्रुधारा बह रही है, और मुख से केवल श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। आप बोलिए सब लोग, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। ऐसे बोलते हुए सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और अपना शरीर त्याग देते हैं। तब तुरंत महाप्रभु चैतन्य उनको अपनी गोद में लेते हैं, उनके अपने हाथ में बाएं तरफ उनका सर, हाथ में उनके पैर लेते हैं और बहुत देर तक आंसू बहाते हुए उनको देखते रहते हैं। उसके बाद में बोलते हैं कीर्तन करो, तो महाप्रभु चैतन्य अपने हाथ में हरिदास ठाकुर का दिव्य शरीर लेकर बहुत झूम झूम कर नाचते हैं, पागलों की तरह नाचते हैं, बेभान होकर नाचते हैं, भाव विभोर होकर नाचते हैं, गोल गोल घूमते हैं, कूदते हैं, चारों तरफ भागते हैं, सब जगह बहुत देर तक कीर्तन करते हैं। उसके बाद में उनको शरीर को रखते हैं और सब वैष्णव जमा होता है, जैसे खबर होती है कि चले गए तो सब वैष्णव और इकट्ठा होते हैं वहाँ पर सबके साथ। कीर्तन करने के बाद में वहाँ पर फिर रुक जाते हैं और कहते हैं आज का समय जिसने भी हरिदास ठाकुर का तिरुभाव देखा है, जिसने भी ये घटना का अवलोकन किया है, जो भी इस घटना का साक्षी है, वो सब लोग कृष्ण की प्रीति को प्राप्त करेंगे और भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। जो भी व्यक्ति हरिदास का नाम लेगा, हरिदास हरिदास बोलेगा, वो भी कृष्ण भक्ति प्राप्त करेगा और भगवत धाम को प्राप्त करेगा। यहाँ पर उपस्थित जितने व्यक्ति हैं जिन्होंने मैं आज ये सब दृश्य को देखा हुआ है, वो सब लोग भगवान के धाम के हकदार हो गए, ऐसा महाप्रभु स्वयं ऐलान करते हैं, घोषणा कर देते हैं। मतलब हरिदास तो इतने दिव्य तरीके से अपना शरीर त्याग देते हैं, लेकिन इस घटना की वजह से महाप्रभु चैतन्य जितने भी प्रेक्षक थे वो सबको वरदान देते हैं। मतलब अपने गौलोक जाने के साथ साथ ठाकुर हरिदास जितने भी वैष्णव वहाँ पर उपस्थित सबको गौलोक जाने का इंतजाम कर देते हैं। इतने महान वैष्णव, वैष्णव कभी भी अकेला नहीं जाता है, जब जाता है भगवत धाम तो सबको लेके जाता है साथ में, उनकी व्यवस्था करके जाता है। उसके बाद गौरांग महाप्रभु ने स्वयं उनका शरीर उठाया और जगन्नाथपुरी के समुद्र के पास गए, वो सब भक्तों के साथ में मिलकर गड्ढा खोदा, उन्होंने अपने हाथ से समाधि दिया उनको। उन्होंने कहा कि आज मुझे भीष्मदेव के तिरुभाव की याद आती है, जिस प्रकार भीष्मदेव ने कितने महीने इंतजार किया। गीता जी तो कही थी, अभी एकादशी के दिन गीता कही थी, उसके बाद 18 के दिन के बाद में महाभारत युद्ध खत्म हो गया था, तब से वो मकर संक्रांति तक शरशय्या पर थे, उतने दिन इंतजार कर रहे थे वो कि श्री कृष्ण आएंगे और श्री कृष्ण भगवान उनको लेकर, पांडवों को लेकर राजवस्त्र में लेकर जानबूझ के लेके आते अलंकारण के साथ, क्योंकि भीष्मदेव को इच्छा थी युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में देखने की। तो राज्याभिषेक करके राजवस्त्र पहनकर अलंकार के साथ में लेकर आते उनको, राजदंड के साथ में लेके आते, और तब भगवान के अवलोकन करते हुए हाथ जोड़कर आंखों से नदियों की अश्रु नदी बहाते हुए भीष्मदेव अपना शरीर छोड़ते हैं। तो महाप्रभु चैतन्य याद करते हैं कि आज मुझे याद आ रहा है भीष्मदेव के तिरुभाव का। इसी तरह से भीष्मदेव ने अपना शरीर त्याग दिया था भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, आंखों से अश्रु बहाते हुए प्रेम में भावना में शरीर छोड़ दिया था। उसी प्रकार आज हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्याग दिया है, इस तरह से उनको समाधि देते हैं, अपने हाथ से मट्टी डालकर समाधि बनाते हैं। उसके बाद में और एक महान कार्य करते हैं, जगन्नाथपुरी के घर घर में जाकर भिक्षा मांगते हैं उनके 13वें श्राद्ध को करने के लिए, 13वें दिन के श्राद्ध को करने के लिए भिक्षा मांगकर पैसा इकट्ठा करते हैं और वो पैसे से स्वयं भगवान ठाकुर हरिदास का श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। कितने महान व्यक्ति थे, हा? भगवान ने अपने क्रिया से बताया कि हरिदास कितने महान थे, भीष्मदेव कितने महान थे, कृष्ण भगवान ने अपने क्रिया से दिखाया। वो वहाँ पर खड़े हो गए उनकी आंखों के सामने, उनकी पूरी इच्छा को, उन्होंने सब इच्छा को पूर्ण किया उनके। सही समय पर उत्तरायण शुरू होने के बाद में बहुत सुंदर तरीके से एक ब्राह्मण के लिए, एक शूद्र के लिए, वैश्य के लिए, क्षत्रिय के लिए आदर्श, एक मनुष्य के लिए आदर्श रूप में तिरुभाव उन्होंने सब प्रकार से कर्मकांडियों के लिए, ज्ञानकांडियों के लिए, भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, शूद्रों के लिए, वैश्यों के लिए, सबके लिए आदर्श तिरुभाव है भीष्मदेव का। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने सामने उनका तिरुभाव करके विश्व को ये साबित कर दिया कि हरिदास क्या व्यक्ति थे, क्या दर्जा था उनका। तो ये जो कथा है हरिदास ठाकुर की। इसको श्रवण मात्र से कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होने का वरदान प्राप्त है। इनका नाम उच्चारण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, बीच में हरिदास 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसे हमको हरिदास हरिदास बीच में बोलना चाहिए। तो केवल उनका नाम उच्चारण करने से हमको वो परम कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसे स्वयं परम दयालु करुणा घन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने वरदान दिया है, कितना आसान कर दिया है हरिदास ठाकुर ने। अपने केवल अस्तित्व से उन्होंने अपने नाम का उच्चारण इतना पवित्र कर दिया कि केवल उनका अस्तित्व होने से, उनके नाम उच्चारण करने से हम वो परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए उन्होंने इतना श्रेष्ठ तपस्या किया था, नाम साधना किया था। तो ये कथा हम रागी कृष्ण प्रभु जी की माता जी आज मतलब वाइफ पत्नी उनकी आज कहीं भी भगवान के दया से जहाँ कहीं भी होंगी, भगवान के पास चरणों के पास सेवा करने में होंगी, वैष्णवों के बीच में होंगी, जहाँ कहीं भी होंगी, जब हम गुजरे हुए व्यक्ति के याद में उनके नाम से कोई कार्य करते हैं तो उसका जो श्रेय है वो उन तक पहुँच जाता है। ऐसे कहते हैं कि ऐसे कई देवताएँ हैं स्पेशलाइज्ड, वो ये तर्पण श्राद्ध ये जो भी क्रिया होती ना उसके फल उस आत्मा तक पहुंचाते हैं। जब हम यहाँ पर श्राद्ध करते कोई गुजरा हुआ है उसका वर्ष श्राद्ध है या बारहवां श्राद्ध है या तो और पांचवें साल का श्राद्ध, जो भी कुछ करते हैं उसके फल को सूक्ष्म रूप में वो आत्मा आज जहाँ कहीं भी हो, किसी भी योनि में हो, किसी भी लोक में हो, किसी भी जगह पर हो, उस आत्मा को उस चीज़ का लाभ देने के लिए कुछ देवताएँ होती हैं। वो आपका चावल लेके जाएंगी लेकिन वो जो भाव है उस घटना का, वो जो उस क्रिया का जो भाव है, उस भाव को, वो लाभ को वो उस जीव तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कभी कभी चमत्कार होते दिखाई पड़ते हैं कल्याण के रूप में, कि कोई हमारा पूर्वज हमारे लिए कोई भगवान के नाम के साथ साथ कोई श्राद्ध कर्म करता होगा शायद। इसलिए हमें भी वो चुकना नहीं चाहिए कभी। एक बार ब्रज में एक संत की माता का देहांत हो गया, तो माता भी संत थी, मैंने उनको बहुत करीब से देखा था, इतनी बहुत इतनी श्रेष्ठ वैष्णवी थी वो, उनका पुत्र भी संत था और उसका श्राद्ध किया जा रहा था। तो मैंने भी बड़ा आश्चर्य हो गया, मैंने कहा तो गौलोक धाम चले गए, श्राद्ध किसका करते हैं, जो यहीं पर आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं अभी तक तो गौलोक पहुँचे नहीं हैं उनके लिए श्राद्ध करते हैं, आगे और बढ़ोतरी मिलने के लिए, उनको पुष्टि मिलने के लिए, उनको सपोर्ट मिलने के लिए फिर हम श्राद्ध करते हैं, क्योंकि वो जहाँ पर भी उसके आगे चले जाएं। लेकिन ये तो गौलोक धाम पहुँच गई, फिर कोई संदेह नहीं है तो इनका श्राद्ध क्यों किया जा रहा है। तुमने उनके गुरु को पूछा, ये पंडित जी के तो मदर माता का श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके गुरु ने तुरंत भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक पढ़ के सुनाया। संत लोग जो होते हैं वो लोक कल्याण के लिए खुद वो कार्य करते हैं जिनको उनको करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर वो संत लोग अपनी माता पिता का श्राद्ध करना बंद कर देंगे तो जो संत नहीं है वो भी उनका अनुकरण करेंगे। इसलिए एक लोगों के सामने आदर्श, आप लोग पढ़िए घर जाके 3रा अध्याय 25वां श्लोक। श्रेष्ठ लोग जो होते हैं वो कई कार्य ऐसे करते हैं जिनको कोई जरूरत नहीं होती करने की, लेकिन फिर भी वो श्रद्धा से कर्तव्य रूप में उस कार्य को करते रहते हैं ताकि आम आदमी जो है वो कार्य करने में ना चुके, वो कर्तव्य करने को ना चुके। इसलिए उन्होंने भी श्राद्ध किया अपनी माता का। गांव के लोग सब तो संत नहीं है, भले पंडित जी ने श्राद्ध नहीं किया तो हम भी बंद कर देंगे, यद यद आचार्य श्रेष्ठस, ऐसे श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे हम करेंगे, इसलिए वो करते रहते। इसलिए हमको भी श्रद्धा से किया हुआ कार्य को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध ये नाम ही पड़ा है जो विधि श्रद्धा से की जाती है, नहीं तो उसमें क्या मतलब है, गया वो आदमी तो जा चुका, हम लोग यहाँ का बैठ के क्या कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा है, श्रद्धा से कर रहे हैं तो उसका लाभ उस व्यक्ति तक पहुँचता है। खास करके आप जो मंत्र बोल रहे हैं, विधि कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उससे नहीं, आप कितनी भक्ति से कर रहे हैं और आप भगवान का नाम का कितनी भक्ति से उनके लिए उच्चारण कर रहे हैं, वो जो सार है वो सार उनको पहुँचता है। इसलिए श्राद्ध करने वाला व्यक्ति भी जो है वो भक्त होना चाहिए। अगर वो पापी है तो उसके पाप का फल भी वहाँ तक पहुँचता है और उसकी अधोगति का कारण बनता है। इसलिए जो अग्नि देता है उसको भी भक्त होना चाहिए। पुत्रायते इति पुत्रः, पुत नाम के नरक से बचाने वाला वो व्यक्ति होना चाहिए, इतना श्रेष्ठ वैष्णव होना चाहिए, तब जाके उसके मुख हाथ से मुखाग्नि प्राप्त होने पर जिसको अग्नि दी हुई है उसकी गति श्रेष्ठ हो गई। इसका मतलब क्या है? हर तरह से हमको भक्त बनना है, नो एक्सक्यूज, हमको भक्त बनना ही है। कभी ना कभी हमको श्राद्ध करना पड़ेगा माता पिताओं का, बड़े भाई का करना होगा शायद, तो जितना भजन हमने किया है उसका ही फल उसको मिलेगा। पाप किया है तो पाप का भी हिस्सा उसको पहुंच जाएगा, और ऊपर जाने के बाद नीचे पर चला जाएगा वो। हाँ, भले पुत्र हो, ज्येष्ठ पुत्र हो, अगर पापी है तो उसके हाथ से अग्नि देने से वो नीचे जाएगा और अधोगति होगी उसकी। इसलिए हमको सबको कर्तव्य रूप में भक्त बनना चाहिए। वी हैव टू बिकम डिवोटीज एज अ ड्यूटी, मैटर ऑफ ड्यूटी, तब जाकर ऐसे भक्त के दुनिया में होने से जहां पर भी वो है, जितने भी संपर्क में लोग आ रहे हैं सबको लाभ होता रहेगा, और जिसके लिए भी प्रेरणा प्रार्थना करेगा उसको भी लाभ होगा, जिसका भी श्राद्ध करेगा वो सबको लाभ होते रहेगा। और अगर वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं, प्योर डिवोटी बनेगा, तो उसके संपर्क में 21 पीढ़ियों में जितने लोग हैं वो सबका उद्धार हो जाएगा। ऐसा ये भक्ति का मार्ग है जो श्रीमद् भागवतम में बड़े क्या कहते हैं उसको, परिणामकारक रीति से बड़े इफेक्टिवली उसको प्रेजेंट किया गया है। द ओनली थिंग, एकमात्र उसमें संदेश है वो है शुद्ध भक्ति का श्रीमद् भागवतम में, अमलम पुराणम, और कोई उसके अंदर कोई विधि, कोई कांड, कोई कुछ नहीं उसके अंदर, ना कर्म कांड, ना ज्ञान कांड, उपासना कांड, ना कोई योग कांड, और कुछ नहीं, केवल भक्ति और भक्ति और भक्ति है। केवल भक्तिर भवति नैष्ठिकी, ऐसा शास्त्र है वो। उसका केवल उच्चारण करने से, पठन करने से, श्रवण करने से सब लोग जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उनकी साखलियां टूट जाती है, सब लोग भगवान के धाम का दर्शन करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कृष्ण भगवान की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।